एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका चीज कंप्यूटर के सफर को देखती है।
हाँ, मतलब कैसे वो बड़ी बड़ी मशीनें जो पूरे कमरे में आती थीं आज हमारी जेब में फिट हो जाती हैं।
बिल्कुल। और ये किताब है पॉल ई सेरुज़ी की कंप्यूटिंग अ कंसाइज हिस्ट्री। हम इसी पर आज बात करेंगे।
सही। और ये विषय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सब डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं ना, तो ये समझना कि ये दुनिया बनी कैसे, ये किताब इसी मुश्किल इतिहास को थोड़ा आसान बनाती है
और पर्दे के पीछे की चीजें भी बताती है, जैसे मिलिट्री की जरूरतें या फिर बिजनेस की मांगे।
हाँ, और यूनिवर्सिटीज की रिसर्च वगैरह ये सब कैसे मिला। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करते हैं, अनपैकिंग करते हैं इसे। पहले लेखक के बारे में जानते हैं। पॉल ई सेरुज़ी कौन है ये?
हाँ, ये जानना जरूरी है क्योंकि सेरुज़ी कोई टिपिकल कंप्यूटर साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं है। वो असल में टेक्नोलॉजी के इतिहासकार हैं।
अच्छा।
और उन्होंने कई साल स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में क्यूरेटर के तौर पर काम किया है। मतलब उन्हें कंप्यूटिंग के इतिहास से जुड़ी असली मशीनों, पुराने दस्तावेजों, इन सबको करीब से देखने का मौका मिला।
तो उनका नजरिया सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स पर नहीं है बल्कि उस पूरे कॉन्टेक्स्ट पर है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, समाज पर क्या असर पड़ा।
बिल्कुल। वो सिर्फ क्या नहीं बताते बल्कि क्यों और इसका मतलब क्या है इस पर ज्यादा जोर देते हैं। वो कहानी को उसके पूरे माहौल के साथ पेश करते हैं।
ये तो बढ़िया है।
और उनकी एक खास बात ये भी है कि इतनी गहरी जानकारी होने के बावजूद वो इसे लिखते बहुत सरल अंदाज में हैं। उनकी एक और किताब है, थोड़ी ज्यादा एकेडेमिक है, अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग।
हाँ हाँ
पर ये वाली कंप्यूटिंग अ कंसाइज हिस्ट्री, ये MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। इसे खास तौर पर आम लोगों के लिए लिखा गया है ताकि कॉम्प्लेक्स बातें आसानी से समझ आ जाएं।
तो ये किताब हमें कहां से कहां तक ले जाती है? क्या ये बस मशीनों के छोटे और तेज होने की कहानी है या कुछ और?
नहीं, यहीं से रुज़ी का मेन आर्ग्यूमेंट आता है। वो कहते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है कि बस टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई।
अच्छा, तो फिर क्या है?
ये असल में तीन अलग अलग धाराओं के मिलने की कहानी है, संगम है ये। पहली धारा है गणना, कैलकुलेशन, मतलब हिसाब किताब करना, नंबर्स जोड़ना, घटाना, गुणा करना, जैसे कैलकुलेटर।
ठीक है, कैलकुलेशन। और दूसरी?
दूसरी है तर्क और नियंत्रण, लॉजिक एंड कंट्रोल, मतलब किसी काम को करने के नियम बनाना और उसे ऑटोमेटिक तरीके से करवाना। आप सोच सकती हैं पुराने जमाने के वो करघे जो पंच कार्ड से डिजाइन बनाते थे, वो लॉजिक और कंट्रोल था।
हाँ, समझ गई। और तीसरी?
तीसरी धारा है संचार, कम्युनिकेशन, यानी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वो सब।
अच्छा।
सेरुज़ी कहते हैं कि जब ये तीनों धाराएं, गणना, नियंत्रण और संचार, आकर मिली, तब जाकर वो बना जिसे हम आज मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग, इन तीनों का मिलना।
एकदम सही। किताब इसी संगम की कहानी कहती है, चार्ल्स बैबेज के मैकेनिकल सपनों से शुरू होकर।
हाँ, वो 19th सेंचुरी वाले।
हाँ, फिर अमेरिकी जनगणना में हर्मन हॉलेरिथ की पंचकार्ड मशीनें, फिर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम इनाक और कोलोसस जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर,
फिर वो बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर आए, IBM वाला दौर।
बिल्कुल। फिर मिनी कंप्यूटर जिन्होंने कंप्यूटर को थोड़ा और फैलाया, और फिर आई माइक्रोप्रोसेसर क्रांति जिसने पर्सनल कंप्यूटर को मुमकिन बनाया,
और आखिर में नेटवर्किंग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब।
हाँ, जिसने कंप्यूटर को एक अकेली मशीन से निकालकर दुनिया से जोड़ दिया, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम का दरवाजा बना दिया। किताब यही दिखाती है कि कंप्यूटर का मकसद कैसे बदला, सिर्फ मुश्किल गणित हल करने से लेकर इंसानी कम्युनिकेशन का एक जरिया बनने तक।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, कुछ अहम पड़ावों को देखते हैं। 1945 से पहले का दौर, कंप्यूटिंग का प्रागैतिहास जैसा सेरुज़ी कहते हैं, चार्ल्स बैबेज का जिक्र आता है।
हाँ, बैबेज कंप्यूटर का पितामह। उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन सोचे थे, भाप से चलने वाले मैकेनिकल कंप्यूटर।
पर वो बन तो नहीं पाए थे शायद?
पूरे नहीं बन पाए, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके एनालिटिकल इंजन के डिजाइन में आज के कंप्यूटर के सारे हिस्से मौजूद थे। एक मिल थी जो CPU जैसा काम करती, एक स्टोर मेमोरी की तरह, इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड, आउटपुट के लिए प्रिंटर। सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना पहले।
और एडा लवलेस, उनका क्या रोल था? पहला प्रोग्रामर कहते हैं उन्हें।
सेरुजी बताते हैं कि उन्होंने बैबेज के इंजन के लिए नोट्स लिखे थे, जिसमें एक एल्गोरिथम भी था। लेकिन उससे भी बड़ी बात लवलेस ये समझ गई थी कि ये मशीन सिर्फ नंबर नहीं बल्कि किसी भी तरह के सिंबल को प्रोसेस कर सकती है।
अच्छा, मतलब ये सिर्फ कैलकुलेटर नहीं है।
हाँ, ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग की पहली झलक थी। वो भविष्य देख रही थी।
फिर हर्मन हॉलेरिथाई, 1890 अमेरिकन जनगणना, पंच्ड कार्ड वाली मशीन।
हाँ, उसने जनगणना का काम बहुत तेज कर दिया और वही ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग की शुरुआत थी।
हाँ,
उनकी कंपनी ही आगे चलकर IBM का हिस्सा बनी।
हाँ,
तो मतलब डेटा स्टोरेज, IO, ऑटोमेशन, ये सब आइडिया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले के हैं।
तो ये तो हुई मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल बात। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैसे आए? World War II का जिक्र किया था आपने।
बिल्कुल, 1940 का दशक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जन्म। और हाँ, दूसरा विश्व युद्ध सबसे बड़ा कारण था। लड़ाई में बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ने लगी थी, तोप चलाने के लिए, फायरिंग टेबल, एटम बॉम्ब का डिजाइन।
हाँ, ये सब हाथ से करना तो नामुमकिन होता होगा।
बहुत धीमा था। यहीं जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड की, और इसी से आया ईनियक।
ईनियक वो बहुत बड़ी मशीन थी ना, तस्वीरों में देखा है।
हाँ, बहुत बड़ी। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बनी। करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, पूरा कमरा भर जाता था। इसमें एक दिक्कत थी, हर नए काम के लिए तारों को हाथ से बदलना पड़ता था।
ये तो बड़ा झंझट रहा होगा।
बहुत। लेकिन ईनियक ने यह साबित कर दिया कि इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाना और चलाना मुमकिन है।
और ब्रिटेन में कोलोसस, वो भी इसी टाइम का है।
हाँ, कोलोसस ब्रिटेन में कोर्ट तोड़ने के लिए बना था, ब्लिचली पार्क में। वो असल में ईनियक से पहले चालू हो गया था और प्रोग्रामेबल भी था, तारों को बिना बदले, पर उसे सीक्रेट रखा गया था सालों तक।
अच्छा।
लेकिन इस दौर का सबसे क्रांतिकारी आइडिया आया जॉन वॉन न्यूमैन से।
वॉन न्यूमैन का स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये क्या था? इतना जरूरी क्यों है?
ये गेम चेंजर था। वॉन न्यूमैन ने कहा कि कंप्यूटर के निर्देश यानी प्रोग्राम और वो डेटा जिस पर प्रोग्राम काम करेगा, दोनों को एक ही मेमोरी में रखा जा सकता है।
अच्छा, पहले ऐसा नहीं था ईनियक में?
नहीं, ईनियक में प्रोग्राम तारों के कनेक्शन से तय होता था। वॉन न्यूमैन के आइडिया से प्रोग्राम खुद डेटा की तरह मेमोरी में लोड हो सकता था।
तो इसका मतलब तार बदलने की जरूरत खत्म, बस नया सॉफ्टवेयर लोड करो और काम बदल गया।
बिल्कुल, इससे कंप्यूटर अचानक बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत वर्सेटाइल हो गए। आज हम अपने फोन पर फट से ऐप बदल लेते हैं। ये उसी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की देन है। इसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं और आज भी ज्यादातर कंप्यूटर इसी पर चलते हैं।
कमाल है। तो युद्ध ने स्पीड दी और वॉन न्यूमैन ने फ्लेक्सिबिलिटी।
हाँ, और कंप्यूटिंग की दिशा ही बदल दी।
तो अब कंप्यूटर प्रोग्रामेबल हो गए थे, लेकिन ये अभी भी लैब और मिलिट्री तक ही थे। बिजनेस में कैसे आए? यहीं से मेन फ्रेम का दौर शुरू हुआ।
बिल्कुल सही, 1950s और 60s का दशक मेन फ्रेम का युग। यूनिवैक जैसी शुरुआती मशीनें आईं, पर असली दबदबा IBM का था। IBM पहले से पंच्ड कार्ड मशीनें बनाती थी, तो उनके पास बिजनेस की समझ थी
और उन्होंने उस समझ का इस्तेमाल कंप्यूटर बनाने में किया। सिस्टम 360 का नाम बहुत सुना है।
सिस्टम 360 1964 में, ये एक मील का पत्थर था। सेरुजी बताते हैं कि इसका असली इनोवेशन सिर्फ स्पीड नहीं थी। IBM ने पहली बार कंप्यूटरों का एक परिवार पेश किया।
परिवार मतलब?
मतलब अलग अलग साइज और कीमत की मशीनें, छोटी कंपनी के लिए अलग, बड़ी के लिए अलग। पर कमाल की बात ये थी कि सब पर एक ही सॉफ्टवेयर चलता था।
ओह, तो अगर कंपनी छोटी मशीन से शुरू करके बाद में बड़ी ले तो सॉफ्टवेयर बेकार नहीं जाएगा?
एकदम, इसे कहते हैं अपवर्ड कंपैटिबिलिटी। इससे ग्राहक IBM से जुड़ गए, उनका सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट सेफ हो गया। इसने कंप्यूटर को एक अकेली मशीन से एक पूरे इकोसिस्टम में बदल दिया। बड़ा सेंट्रल कंप्यूटर एक्सपर्ट चलाते थे, बाकी लोग टर्मिनल से जुड़ते थे।
और इसी समय सॉफ्टवेयर भी अलग से बिकने लगा होगा।
हाँ, पहले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ आता था, अब सॉफ्टवेयर इतना जरूरी और कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो खुद एक महंगी चीज बन गया। फोर्ट्रान साइंस के लिए, कोबोल बिजनेस के लिए जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं भी इसी दौर में आईं।
तो IBM ने बिजनेस मॉडल सेट किया, कंपैटिबिलिटी दी और सॉफ्टवेयर का महत्व बढ़ गया।
बिल्कुल।
लेकिन क्या कंप्यूटिंग हमेशा बड़े कमरों तक ही सीमित रहती? IBM के दबदबे को कोई चुनौती मिली?
मिली, मिनी कंप्यूटर से। 1960 के आखिर और 70 के दशक में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC जैसी कंपनियों ने PDP सीरीज की मशीनें बनाई।
मिनी कंप्यूटर,
ये मेन फ्रेम से कैसे अलग थे?
साइज में काफी छोटे थे,
दाम बहुत कम।
हाँ, और इस्तेमाल में आसान। इन्हें सीधे लैब में, डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री में रख सकते थे। अलग से एसी कमरे और एक्सपर्ट्स की फौज नहीं चाहिए थी।
तो ये एक तरह से कंप्यूटिंग का डेमोक्रेटाइजेशन था, ज्यादा लोगों की पहुंच में आना।
हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, पहला कदम था उस दिशा में। कंप्यूटिंग अब सिर्फ बड़ी कंपनियों की जागीर नहीं रही।
लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर फैले, सॉफ्टवेयर लिखना और मुश्किल होता गया होगा।
हाँ, बहुत ज्यादा। इसी को सॉफ्टवेयर संकट कहा गया। सॉफ्टवेयर इतने बड़े और जटिल हो गए कि उन्हें टाइम पर, बजट में और बिना गलतियों की बनाना चैलेंज बन गया।
तो इसका हल क्या निकला?
इसी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड बना। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिसिप्लिन्ड तरीके, मेथोडोलॉजीज।
और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी इसी दौर का है। हाँ, बेल लैब्स में बना यूनिक्स बहुत प्रभावशाली था। इसमें मॉड्यूलैरिटी और पोर्टेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट थे, मतलब सॉफ्टवेयर को छोटे हिस्सों में बनाना और उसे आसानी से अलग अलग मशीनों पर चलाना।
तो इस दौर में कंप्यूटिंग फैली, पर सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी।
सही कहा, मिनी कंप्यूटर ने कंप्यूटर को कुछ सस्ता और सुलभ बनाया, लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब कंप्यूटर हमारी मेज पर आ गया, है ना? पर्सनल कंप्यूटर, वो कैसे हुआ?
उसका क्रेडिट जाता है माइक्रोप्रोसेसर को। 1971, इंटेल 4004 चिप।
एक चिप पर पूरा सीपीयू?
हाँ, ये एक जबरदस्त छलांग थी। इसने अचानक बहुत छोटे और सस्ते कंप्यूटर बनाना मुमकिन कर दिया।
और यहीं से कहानी में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट आते हैं।
बिल्कुल, कैलिफोर्निया में होमब्रू कंप्यूटर क्लब जैसे हॉबिस्ट ग्रुप बने। इसी माहौल से निकले स्टीव जोजनियाक और स्टीव जॉब्स। एप्पल कंप्यूटर, वोजनियाक का जीनियस एप्पल आई डिजाइन और जॉब्स का विजन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का।
और बिल गेट्स और पॉल एलन, उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि असली पैसा हार्डवेयर में नहीं सॉफ्टवेयर में है। उन्होंने शुरुआती पीसीज के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाया, पर उनका मास्टर स्ट्रोक था आईबीएम पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस का सौदा करना।
आईबीएम पीसी तो बहुत हिट हुआ था।
हाँ, और आईबीएम ने उसका आर्किटेक्चर ओपन रखा, मतलब कोई भी उसे कॉपी करके कंपैटिबल कंप्यूटर बना सकता था।
इससे क्लोन कंप्यूटरों की बाढ़ आ गई।
बिल्कुल, और इसी ने माइक्रोसॉफ्ट के एमएस डॉस और बाद में विंडोज और इंटेल के प्रोसेसर के विंटेल स्टैंडर्ड को इंडस्ट्री पर हावी कर दिया। तो इस दौर का निचोड़, माइक्रोप्रोसेसर ने पीसी को जन्म दिया, सॉफ्टवेयर किंग बन गया।
तो अब कंप्यूटर डेस्क पर आ गया था, पर क्या उसे चलाना आसान था? वो कमांड लाइन वाली स्क्रीन डरावनी लगती थी।
एकदम सही पॉइंट है। मशीन बना देना एक बात थी, उसे यूजेबल बनाना दूसरी। यही एंट्री होती है ज़ेरॉक्स पार्क की, पालो एल्टो रिसर्च सेंटर। 1970s में आविष्कारों का गढ़ था वो।
ज़ेरॉक्स पार्क, फोटोकॉपी वाली कंपनी, उन्होंने क्या किया कंप्यूटर में?
उन्होंने वो चीजें बनाई जो आज हम रोज देखते हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडोज आइकॉन मेनू, पहला कंप्यूटर माउस, ईथरनेट नेटवर्किंग, ये सब वहीं बना।
कमाल है, लेकिन ज़ेरॉक्स ने इसका फायदा उठाया?
नहीं, विडंबना यही है। ज़ेरॉक्स कंपनी समझ नहीं पाई कि उनके हाथ क्या खजाना लगा है, वो इसे मार्केट नहीं कर पाए।
तो फिर किसने पहचाना?
स्टीव जॉब्स ने। उन्होंने पार्क का दौरा किया और GUI और माउस देखकर दंग रह गए
और उसे एप्पल में ले आए।
हाँ, पहले एप्पल लीसा में, जो महंगा था, नहीं चला। फिर 1984 में मैकिंटॉश में। मैक पहला मास मार्केट कंप्यूटर था जिसने GUI और माउस को पॉपुलर बनाया। कंप्यूटर चलाना अचानक इंट्यूटिव हो गया।
और इसी समय किलर एप्लीकेशन का भी जिक्र आता है। ये क्या था?
किलर ऐप मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो इतना कमाल का हो कि लोग सिर्फ उसे चलाने के लिए पूरा हार्डवेयर खरीद लें।
अच्छा, कोई उदाहरण?
पहला बड़ा उदाहरण था विजीकैल्क, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम।
अच्छा,
एप्पल टू के लिए।
स्प्रेडशीट, आज तो ये आम बात है।
उस समय ये क्रांतिकारी था, अकाउंटेंट्स बिजनेस वालों के लिए घंटों का काम मिनटों में। विजीकैल्क ने एप्पल आई को खिलौने से बिजनेस टूल बना दिया। तो सीख ये है, यूजेबिलिटी बहुत जरूरी है और कभी कभी एक ऐप पूरे हार्डवेयर मार्केट को बदल सकता है।
तो अब हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर थे, GUI भी आ गया, लेकिन वो तीसरी धारा कम्युनिकेशन, उसका क्या हुआ? कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़े?
यही कहानी का फाइनल संगम होता है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का उदय। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट आर्पानेट से।
मिलिट्री प्रोजेक्ट।
हाँ, मकसद था एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, अगर हमला हो, एक हिस्सा तबाह हो जाए तो भी बाकी नेटवर्क चलता रहे। इसके लिए प्रोटोकॉल बने TCP/IP, जो आज भी इंटरनेट की जान है।
पर ये तो सालों तक सिर्फ रिसर्च और एकेडमिक दुनिया में ही रहा।
हाँ, आम लोगों तक नहीं पहुंचा था। वो काम किया वर्ल्ड वाइड वेब ने 1990 में टिम बर्नर्स-ली, सर्न में एक ब्रिटिश रिसर्चर।
उन्होंने वेब बनाया, इंटरनेट और वेब अलग हैं।
हाँ, ये समझना जरूरी है। सरूजी इस पर जोर देते हैं, इंटरनेट वो नेटवर्क है, सड़कों का जाल, वेब उस जाल पर जानकारी पब्लिश करने और देखने का तरीका है। वेब इंटरनेट के ऊपर बना है।
तो वर्नर्सली ने क्या खास किया?
उन्होंने तीन चीजें दी, HTML वेब पेज बनाने की भाषा, URL हर पेज का पता, और HTTP ब्राउजर और सर्वर के बीच बात करने का तरीका। और सबसे जरूरी, उन्होंने इसे ओपन रखा, फ्री रखा, कोई भी इस्तेमाल कर सकता था।
और फिर ब्राउजर आए जिसने इसे आसान बना दिया।
बिल्कुल, 1993 में मोजाइक ब्राउजर आया। उसने पहली बार टेक्स्ट के साथ तस्वीरें दिखाना और माउस क्लिक से लिंक पर जाना आसान बनाया।
और बस फिर तो सब बदल गया।
हाँ, वेब और इंटरनेट में पब्लिक इंटरेस्ट का जैसे विस्फोट हो गया। ये था वो फाइनल संगम। पर्सनल कंप्यूटर, गणना और नियंत्रण अब ग्लोबल नेटवर्क, संचार से जुड़ गया। कंप्यूटर सही मायनों में एक यूनिवर्सल मीडियम बन गया।
वाह, क्या कहानी है! इस पूरी यात्रा से कुछ खास बातें या थीम्स उभर कर आती हैं ना?
हाँ बिल्कुल, पहली और सबसे अहम तो वही तीन धाराओं का संगम, कन्वर्जेंस। कंप्यूटिंग अकेली नहीं बढ़ी, बल्कि गणना, तर्क, नियंत्रण और संचार के मिलने से बनी।
दूसरी बात, कंप्यूटर का मकसद बदला, गणना से संचार तक, फ्रॉम कैलकुलेशन टू कम्युनिकेशन। नंबर क्रंचिंग से शुरू होकर आज ये कम्युनिकेशन और कनेक्शन का जरिया है। हमारा स्मार्टफोन इसका जीता जागता सबूत है।
तीसरा, कंप्यूटिंग शक्ति का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग पावर। कुछ गिनी चुनी मशीनों से शुरू होकर आज हर जेब में सुपर कंप्यूटर है। भारत में डिजिटल इंडिया, UPI, आधार, ये सब इसी का फैलाव है।
चौथा, वो सेना, शिक्षा और वाणिज्य का तालमेल, सिम्बायसिस ऑफ मिलिटरी एकेडेमिया कॉमर्स। सेना ने शुरुआत की, यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, बिजनेस ने उसे लोगों तक पहुंचाया। ये तिकड़ी बहुत अहम रही।
और पांचवा, सॉफ्टवेयर का बढ़ता वर्चस्व, सॉफ्टवेयर असेंट टू प्राइमेसी। पहले हार्डवेयर मुख्य था, सॉफ्टवेयर सहायक, आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को चला रहा है। भारत का IT सेक्टर इसी का उदाहरण है।
एक और पॉइंट, यूजर इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन का महत्व। तकनीक को आसान बनाना, उसकी जटिलता को छुपाना कितना जरूरी है। GUI और वेब ने यही किया।
सही कहा।
क्या किताब में कुछ ऐसे विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं? सिरुजी के खास तर्क?
हाँ, जैसे पहला तो वही संगम वाला विचार। इसे ऐसे कह सकते हैं, कंप्यूटिंग का इतिहास सिर्फ मशीन के सुधरने का नहीं, बल्कि कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक करघे और टेलीग्राफ जैसी तीन अलग तकनीकों के एक साथ आने का है।
दूसरा, IBM सिस्टम 360 पर। उसका असली इनोवेशन स्पीड नहीं, बल्कि कंपैटिबल मशीनों के लिए एक स्थिर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाना था, जिसने कंप्यूटर को प्रोडक्ट से इकोसिस्टम बना दिया।
तीसरा, PC क्रांति पर।
ये क्रांति सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर से नहीं आई, बल्कि एक किलर ऐप स्प्रेडशीट ने इसे उड़ाया, जिसने आम लोगों को इसे खरीदने का कारण दिया।
मतलब उपयोगिता सबसे जरूरी है।
और चौथा, वेब पर। टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट नहीं बनाया, वेब बनाया, एक सरल एब्स्ट्रैक्शन लेयर जिसने ग्लोबल नेटवर्क को इंसानों के लिए उपयोगी बनाया। सरलता की ताकत।
तो ये सब जानने का आज क्या फायदा है? ये इतिहास आज कैसे काम आ सकता है?
मुझे लगता है सबसे पहले तो असली इनोवेशन को पहचानने में। अक्सर वो अलग अलग फील्ड्स के मिलने पर होता है, जैसे आज AI और बायोटेक मिल रहे हैं।
बिल्कुल। दूसरा, टेक्नोलॉजी अपनाने के साइकिल को समझना। ज़ेरॉक्स पार्क की कहानी बताती है कि बनाना काफी नहीं, मार्केट तक पहुंचाना और जरूरत से जोड़ना भी जरूरी है। नई टेक्नोलॉजीज जैसे VR, AR या ब्लॉकचेन को इसी नजरिए से देख सकते हैं।
हाँ, और ओपन बनाम क्लोज्ड सिस्टम की बहस। IBM PC ओपन बनाम मैक क्लोज्ड, आज iOS बनाम एंड्रॉयड। इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है।
और एब्स्ट्रैक्शन की ताकत को समझना। हम रोज जो जटिल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उनकी सरलता के पीछे कितनी इंजीनियरिंग छिपी है।
और हाँ, आज की नैतिक और सामाजिक बहसों को सही संदर्भ देना। इंटरनेट की सैन्य शुरुआत जानना हमें आज की साइबर सिक्योरिटी और गवर्नेंस की दिक्कतों को बेहतर समझने में मदद करता है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे खास या चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए तो यही कि ये पूरी डिजिटल दुनिया कितनी अनप्लान्ड, कितनी एक्सीडेंटल सी लगती है। कोई मास्टर प्लान नहीं था, ARP-ANAT वालों ने सोशल मीडिया नहीं सोचा था, बहुत कुछ बस होता चला गया।
और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन और कोड नहीं है, ये इंसानों की कहानी है। उनकी ज़रूरतें, उनकी जिज्ञासा, उनका समाज। तकनीक समाज को बदलती है, समाज तकनीक को। शायद सबसे बड़ी सीख अडैप्टेबिलिटी की है, कैसे हम सब इस बदलते माहौल में ढलते आए हैं और ढलते रहेंगे।
सचमुच एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा रही है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।